ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 21 सूर्य की गतियों का वर्णन। इस अध्याय के आज 4 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक तक यदा मेष तुलयोर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पञ्चसु च राशिषु चरति तदा हि हन्यवः वर्धन्ते ह्यसति वः मासि मास्ये कैका घटिका रात्रिषु। सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब यह वृषभ इत्यादि 5 राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ता जाता है और तब प्रतिमास आधा घंटा घटता रहता है, जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है, जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता, और फिर क्रमशः मास प्रतिमास बढ़ता जाता है जब तक दिन और रात समान मेष राशि पर नहीं हो जाते। यावत् दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावत् उद्गयनं रात्रयः। सूर्य को दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती है। 7 नंबर श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे बोले, हे राजन, जैसा पहले कहा जा चुका बा पहले कह चुका हूँ, पंडितों का कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9,51,00,000 योजना व 73,08,00,000 माइल है। मानसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में जमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित है। ये सभी पुरिया में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती है और तदनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती रहती है। ये कहाँ पढ़ो के सात आठ नौ सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ जाता है किंतु यह घड़ी की दशा में भी घूमता है जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। यहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य देखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अंत होता देखता है, उससे होकर एक सीधे रेखा खींची जाए तो इस रेखा को दूसरे सिर के प्राणी मध्यरात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपने ठीक दूसरी ओर स्थित दिशाओं में जाए तो उसे सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। दस नंबर श्लोक सूर्य इंद्र की पुरी देवधानी से जमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियां 6 घंटे में फूल मिलाकर 2,37,75,000 योजन या 19,02,00,000 की यात्रा करता है। तात्पर्य साधिकानी शब्द से 25,000 अथवा 25,000 योजन की दूरी का अर्थ निकालता है। इस प्रकार इन दोनों पुरियों की दूरी जिसकी सूर्य यात्रा करता है 2,50,00,000 और 12,50,000 योजन है। यह दूरी 2,37,75,000 योजन अथवा 19,02,00,000 माइल है। सूर्य की पूरी परिक्रमा इस दूरी की चौगुनी अर्थात 9,51,00,000 योजन या 76,08,00,000 माइल है। ग्यारह नंबर श्लोक एवं ततो वारुणी सौम्यामैन्द्रिं च पुनस्तथान्ये च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति। सूर्य जमराज की पुरी में वरुण की पुरी निम्लोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्र तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। तात्पर्य भगवद गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं नक्षत्राणं अहं शशी, मैं नक्षत्र में चंद्रमा हूं। इसी से यह सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्र के समान है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो गतिवान है। वैदिक साहित्य से यह पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती है कि आकाश के सभी ज्योतिर्पुंज विभिन्न सूर्य है। नहीं इस यह मान सकते हैं कि नक्षत्र अन्य ब्रह्मांड के सूर्य है क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्व के अनेक स्तर होते हैं और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड संपूजित है किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता है किंतु सूर्य केवल एक ही है। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सूर्य जमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्लोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंच जाता है। इस प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। इस अध्याय में सूर्य की गतियां का वर्णन की जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति में एक ही सूर्य है, लेकिन वैज्ञानिक लोग कहते कि नहीं, कितनी बहुत सूर्य है। जैसे आप भूगोल में बा विज्ञान में पढ़े होंगे स्कूल में कि ये अंधकार आकाश में हम जब आकाश को देखते हैं वहां पर अनेक तारा और नक्षत्र दिखाई पड़ने तारा और ग्रह दिखाई पड़ते नक्षत्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। उनको पहचानने का तरीका किताब या पढ़े होंगे कि नक्षत्र किसको कहते हैं और ग्रह किसको कहते हैं। किसको नक्षत्र कहते हैं? जो टिमटिमाते हुए आलोक प्रदान करता है, स्थिर आलोक नहीं, टिमटिमाते रहता है उसको कहते हैं नक्षत्र। ऐसे मैंने जैसे आप किताब में पढ़े हो, और जो स्थिर आलोक प्रदान करता है वो ग्रह है। और ये आप पढ़े कि नक्षत्र की अपना स्वतंत्र आलोक होता है और ग्रह में अपना स्वतंत्र आलोक नहीं होता है, नक्षत्र के आलोक से ग्रह आलोकित होते हैं। इसलिए कि सूर्य को एक नक्षत्र कहा गया और चंद्रमा को और पृथ्वी को क्या कहा गया, एक ग्रह बता गया। मैंने वैज्ञानिक लोग जैसे कहते हैं वैज्ञानिक कहते कि चंद्रमा तो ग्रह भी नहीं है, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा ठीक नहीं है। तात्पर्य प्रारंभ से कहते कि नक्षत्राणं अहं शशि, भगवान कहते कि भगवद गीता के 10वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में नक्षत्राणं अहं शशि, नक्षत्र में मैं कौन हूं, चंद्रमा। अर्थात चंद्रमा भी एक नक्षत्र है और इसका अपने आलोक है, यानी कि सूर्य के आलोक से चंद्रमा आलोकित होता है। पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में चंद्रमा की जो आलोक होता है बहुत शीतल होता है, जो सुनाए बहुत शीतल आलोक है। ये समस्त उद्भिद को पोषण करती हैं, समस्त उद्भिदों की ये राजा है। हम जो भी फल फूल जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ये चंद्रमा की ज्योत्सना से ही ये पूरित होते हैं, उसी के द्वारा फल फल पुष्प ये सब पूरित होते हैं। इसलिए चंद्रमा में भी अपना आलोक है, लेकिन वो सूर्य आलोक की तरफ इतने तेज आलोक नहीं है, उसमें उष्मता नहीं आता है। तो उसमें चंद्रमा की जो आलोक है वो स्निग्ध बहुत शीतल आलोक होता है। तो उससे ये इसलिए उद्भिदों की राजा माना चंद्रमा को कहते कि ये सब उद्भिदों को वनस्पतियों को ये पोषण करने वाला है। इसलिए दूसरे बात जो चंद्रमा को हम कहते कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, चंद्रमा कहते ना, चंद्रमा सबसे निकटतम पृथ्वी से। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी सबसे पहले अंतरिक्ष जान में वालेंटिना तेरेस्कोवा रशिया की और कहीं से अंतरिक्ष जान में यात्रा करने लगे और कुछ लोग डिक्लेयर किए कि हम कहाँ पहुँच गए, चंद्रमा में पहुँच गए, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत इसकी विरोध किए और उन्होंने अपने पुस्तक सबसे पहला पुस्तक लिखे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो कैसे संभव, कहाँ कैसे संभव हो सकता है, लोग चंद्रमा में कैसे पहुँच सकते हैं है? हमारे ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर हमें जो बारों की निर्णय करते हैं, सबसे पहले तो सूर्य की सॉरी पृथ्वी से दूरता के आधार पर ये नक्षत्र की ग्रहों की निर्णय की गई है। सबसे पहले पृथ्वी जो सबसे जो निकटतम ग्रह है वो है क्या, कौन सा, ज्योतिष शास्त्र की माने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर पृथ्वी के सबसे निकटतम जो प्लैनेट हो क्या है, सबसे पहले जो डे दिन हम निर्णय करते कौन सा दिन है, संडे। तो जो पहले सबसे पहले है संडे अर्थात रविवार, इसके बाद सोमवार, इसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये पृथ्वी किसे दूरता के आधार पर ये बारों की निर्णय की जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहला जो निकटतम ग्रह है पृथ्वी से, पृथ्वी से तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वैदिक ज्ञान के आधार पर वो है सूर्य, सूर्य सबसे निकटतम है, उसके बाद चंद्रमा, सोम, सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध, इसके बाद गुरु बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि। इसी प्रकार पृथ्वी से दूरता के आधार पर ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर यह निर्णय की गई है। लेकिन अतः आजकल की जो वैज्ञानिक शास्त्र वैज्ञानिक है कहते कि नहीं नहीं पृथ्वी से सबसे दूर जो पास में है वो है चंद्रमा, हम लोग चंद्रमा से जाके आ गए और चंद्रमा में कुछ मिट्टी लेकर आ गए, पत्थर मिट्टी, वहां पर जब क्या कोई जीवात्मा निवास नहीं करते हैं, वहां पर वायुमंडल में नहीं है, सो निर्णय। लेकिन इस बात को प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये वैदिक सिद्धांत व भागवत के सिद्धांत के विरोध है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि नक्षत्राणां अहं शशि, मैं नक्षत्र में चंद्रमा हूं, इससे यह सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के समान है और इसकी अपने आलोक है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और जो गतिमान है। वैदिक साहित्य से हम पाश्चात्य सिद्धांत को पुष्टि नहीं कर पाती हैं कि पाश्चात्य सिद्धांत में कहते कि कई सूर्य हैं, जितने मेरे तारा हैं ये सब एक एक सूर्य है, इनका अपना आलोक है और ऐसे ही अनेक सूर्य है, आकाश में बहुत सूर्य है। वैदिक सिद्धांत के आधार पर हम कहते कि एक ही सूर्य है। जश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणांग राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये पिछले श्लोकों के तात्पर्य प्रभुपाद जी इसको भी कोट किए हैं। मैं उन आदिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ जिनके नियंत्रण में ईश्वर के नेत्र माने जाने वाले सूर्य भी काल की स्थिर कक्षा में घूमते हैं। सूर्य समस्त लोगों का राजा है और इसमें असीम ताप तथा प्रकाश शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहने की वैज्ञानिक लोग जो कहते कि कई सूर्य है, ऐसे नहीं है, एक ही सूर्य है। आ? हम कई सूर्य कहते, शशि सूर्य नेत्रम, ये दोनों विशेष रूप में इस ब्रह्मांड में प्रसिद्धि लाभ करते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा। दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा की प्राधान्यता है। तो इसलिए आजकल की जो वैज्ञानिक कहते कि अनेक सूर्य है, जितने भी पट्टी मिट्टी मारने वाले जो नक्षत्र आकाश में हम देखते हैं अंधकार रात्रि में, ये सब एक एक सूर्य है। वो कहते हैं इनका अपने अपने आलोक है, नक्षत्र के अपने आलोक होता है, ग्रहों के अपने आलोक नहीं होता, नक्षत्र के आलोक से ग्रह प्रकाशित होते, ये सब जो सिद्धांत है इसको प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं करते, जो वैज्ञानिक लोग, क्योंकि ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध करता है। वैदिक शास्त्र में से ये पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती है कि आकाश से सभी ज्योतिष को पुंज विभिन्न सूर्य है। नहीं हम यह मान सकते हैं कि नक्षत्र अन्य ब्रह्मांड के सूर्य है, कि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्व के अनेक स्तर होते हैं, और इसी प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड संपूजित है किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे की नहीं देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रह पर ही देवता है, किंतु सूर्य केवल एक ही होता है। ब्रह्मा तो कई होते हैं, ब्रह्मा एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा की ज्यादा ब्रह्मा है, कितनी ब्रह्मांड है? करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों ब्रह्मांड है तो ब्रह्मा का भी, ये सबसे जो छोटा ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रहते हैं, ये ब्रह्मांड को कहते, क्या कहते, 14 ब्रह्मांड है। नाम बिनु आर किछु तो नहीं, 14 भुवन माझे। लेकिन ये जो सबसे छोटा वाला जो ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रहते हैं, इसकी जो सृष्टि कार्य जिनको दी गई है, संपादन की भगवान ने किया है, तो ये ब्रह्मा जी की कितनी माथा है? 4 माथा है। लेकिन इसी प्रकार अशेष कोटि ब्रह्मांड है, जिसके अनुभव 4 माथा वाले ब्रह्मांड ने ब्रह्मा को द्वारका में हुआ था। द्वारका में जो ब्रह्मा जी गए थे और इनको ये अभिमान था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, लेकिन इनकी ये छोटा अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने इनके सामने सारे अन्य ब्रह्मा को भी प्रकट कराकर दर्शन कराए थे। तो ये ब्रह्मा जी को का भ्रम नष्ट हुआ कि उन्होंने जब देखे 10 मुख वाले ब्रह्मा, फिर 50 मुख वाले, 100 मुख वाले, हजारों मुख वाले, परार्ध मुख वाले ब्रह्माओं को देखकर, ये इनके सामने छोटे से खड़े थे एक कोने में, भगवान की जो माया के प्रभाव से भगवान ने उसी कमरे को भी विशाल कमरे बना सके हैं, और उसी के अंदर सारे ब्रह्मा और अन्य रुद्र, सभी रुद्रों को ब्रह्मा को उन्होंने देखा, 4 मुख वाले ब्रह्मा देखे थे। इसलिए इसी अशेष ब्रह्मांड है, अशेष ब्रह्मा जी भी है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि किंतु सूर्य केवल एक ही है। सूर्य इतने सारे ब्रह्मांड है लेकिन एक ही सूर्य कैसे हो सकता? कभी कभी कहते द्वादश आदित्य, द्वादश सूर्य है। आदित्य का अर्थ सूर्य नहीं कहा गया यहाँ पर, आदित्य का अर्थ अदिति की पुत्र है, अदिति देवताओं की माता अदिति, और उनकी जो पुत्र इनको आदित्य कहते हैं। आदित्य के एक अर्थ, एक मीनिंग है सूर्य, इसका मतलब है आदित्य का अर्थ सब समय सूर्य नहीं कहा, आदित्य का अर्थ अदिति की पुत्र। ये समस्त अदिति की जितने भी देव माता अदिति की जो पुत्र हैं उनमें से सूर्य एक है, लेकिन आदित्यानंग अहंग विष्णु, अदितियों की पुत्र में से भगवान कहते कि मैं कौन हूँ? विष्णु। द्वादश पुत्र कौन थे? इनके द्वादश गर्भ में वामन देव आए थे। तो लेकिन तो ये कहते सूर्य एक ही है। स्मार्त रीति में कर्मकांड उपासना के अनुजाई हमें सूर्य को भी भगवान कहते हैं, स्मार्त मत में वो कहते हैं, कहते 5 भगवान हैं। कौन कौन 5 समान स्तर में वो कहते हैं? विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश। ये स्मार्त मत में कहते कि ये सब भगवान है। यदि हम इसको वैष्णव रीति में नहीं मानते, हम जानते कि भगवान केवल एक ही है। कौन भगवान है? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्वित। भगवान कहे सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है, मैं ही समस्त सृष्टि का एकमात्र कारण हूँ, सब कुछ मेरे से, मैं ही सभी कारण के कारण हूँ। लेकिन भारत में हम देखे हैं कि पांच संप्रदाय अलग अलग प्रकार के लोग है जो एक एक को भगवान मानने वाले हैं। महाराष्ट्र में किसको भगवान मानते? गणेश को मानने वाले हैं। कुछ शाक्त लोग रहते दक्षिण भारत में, कुछ शाक्त शैव लोग भी रहते, शिव को भगवान मानते हैं, शंकर जी को है। कहते शंकर जी के कोई माता पिता नहीं है, हैं, और तुम्हारे जो कृष्ण आता है, विष्णु सब अवतार, राम होते, ये सब माता पिता वाले हैं। है? कई युक्ति लोग, कई प्रकार की युक्ति है। तब तो कहते कि शंकर जी ने क्या सदा सदा के लिए रहने वाले हैं शंकर जी, कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ देवी को भगवान मानते हैं, हैं, और कुछ लोग सूर्य को भी भगवान मानते हैं, आदित्य हृदय पाठ करते लोग हैं, आदित्य सूर्य को भी कभी कभी भगवान कहा जाता है, कभी कभी सूर्य को हम कहते कि सूर्य नारायण, क्या कहते सूर्य नारायण है। लेकिन भगवान कहते कि सूर्य को ज्ञान कौन दिया है, सूर्य की भी ज्ञान के एक उत्स उनसे ही आती है, एक परंपरा सूर्यदेव से भी आती है। सूर्यवंशी क्षत्रिय भी होते हैं, चंद्रमा चंद्रवंशी और सूर्यवंशी हैं, दो वंश से क्षत्रिय आते हैं। लेकिन भगवान कहते कि गीता के ज्ञान में पहले किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को, एवं विवस्वते जोगं तक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान ए मानव प्राह मनोख्या को अवरवीत। तो ज्ञान में सूर्यदेव विवस्वान को भी कहा था, अर्थात सूर्य देव, सूर्य जो है ये कोई व्यक्ति विशेष है कि एक प्लैनेट है या क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य कोई पोस्ट है या सूर्य एक व्यक्ति है, सूर्य प्लैनेट क्या क्या आप सोच रहे हैं, कैसे हैं, है? लेकिन ये कौन सा परमानेंट सब समय कौन सा रहता है? अभी जो सूर्यदेव है, जो सूर्यदेव की पोस्ट में है, उनके नाम क्या है, विवस्वान, वैवस्व तो मनु के पुत्र विवस्वान, ये विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिए थे। ये सूर्यदेव देव सूर्य प्लैनेट का जो अधिष्ठाता देवता, जो भी इसको परिचालित करते हैं, तो इसलिए सूर्य एक प्लैनेट है, सूर्य एक पोस्ट भी है, जैसे इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है कि नहीं, इंद्र चंद्र वरुण ये सब एक एक पोस्ट है, और इस पोस्ट को कोई भी अधिकारी, किसी भी जीवात्मा अपने सुकृति के बल पर उस पोस्ट को हासिल कर सकता है। इसको हासिल करने के लिए कुछ योग्यता भी हासिल करना पड़ता है, कुछ योग्यता होने पर इसी पद पर व्यक्ति बैठ सकता है, है? जमराज, जमराज का भी एक पोस्ट है, जमराज की जो पुरी यहाँ पर क्या कहा गया, सम्य मणिपुरी, है? तो इंद्र का पुरी को क्या नाम दिया गया, है? इंद्र जी का पुरी को क्या कहा गया, जोर से बोलो ना, यहां अभी अभी पढ़ रहे थे ना, है? इंद्र का इंद्रपुरी सुमेरु पर्वत का कौन सा दिशा में रहता है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में इंद्रपुरी रहता है, और ठीक पश्चिम दिशा में इसका इसका पश्चिम में कौन सा रहता है, कौन सा लोक रहता है, वरुण लोक, है? वरुण जी के लोक इसके ठीक पश्चिम विपरीत में रहता है। उत्तर दिशा में कौन सा लोक रहता है, चंद्रमा, और दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जमराज, इसलिए दक्षिण को बोलते हैं दक्षिण दिशा में जमराज की पूर्व सम्य मणिपुर रहता है। विभावरी, विभावरी किस कौन सा पूर्व को कहते हैं, चंद्रमा की निवास स्थान को कहते हैं विभावरी, है विभावरी शेष, चंद्रमा के अधिपति जब सूर्य की प्रारंभ होने व सूर्य की अर्थात दिन प्रारंभ होने वाला है, विभावरी शेष रात्रि, विभावरी चंद्रमा के लोक को कहते विभावरी, और तो सूर्य जो सूर्य दक्षिण में जमराज की पुर को सम्यमणि कहते, इंद्र के देव को देवधानी, इंद्रदेव को लोग का क्या कहते हैं, इंद्र के देव लोग को देवधानी, ये पूर्व दिशा में रहता है सुबेरी पर्वत के, दक्षिण में जमराज के सौम्यमणि, पश्चिम में वरुण और बा इसको निम्नलोचनी कहते हैं वरुण देव का लोक को, का उत्तर में चंद्रा चंद्र की लोक विभावरी नाम से ये पुरियां स्थित है। ये सुमेरु पर्वत के चारों दिशा में है। सुमेरु पर्वत का ठीक ऊपर में किसका लोक है, सुमेरु पर्वत का ऊपर कौन सा किसका लोक है, हैं ब्रह्मा जी के लोक है। तो ब्रह्मा लोक से ठीक सेंटर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और उनके चारों साइड में जो मुख्य मुख्य देवता इनकी लोक रहता है, हैं ब्रह्मा जी तो बीच में रहते हैं लेकिन पूर्व दिशा में इंद्र रहते हैं, पश्चिम दिशा में वरुण देव रहते हैं और इसकी सुमेरु पर्वत का ठीक उत्तर दिशा में चंद्रमा रहती हैं चंद्रलोक और विभावरी जिसको कहते हैं, और इसकी दक्षिण दिग में जमराज रहते हैं। ये सभी लेकिन ये सभी एक एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट में बैठे हुए हैं, जमराज भी एक पोस्ट है लेकिन जमराज की पोस्ट कुछ विशेष है, क्योंकि जमराज की पद में जो बैठता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भक्त हुए बिना जमराज की पोस्ट में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसको पाप पुण्य विचार करना है तो उसको, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक करेगा तो बहुत कुछ, फिर उसको क्या बन गया, बनना पड़ता है शूद्र बनना पड़ा जमराज को, है विदुर जी के रूप में आना पड़ा, फिर भी वो कि महाजन है जमराज की पोस्ट बड़े, तो भक्त हुए बिना कोई जमराज की पोस्ट में नहीं बैठ सकता है। लेकिन अन्य पोस्ट के लिए एक जो इंद्र की पोस्ट है, यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा, हैं इंद्र की पोस्ट मिल सकता है। ब्रह्मा जी का पोस्ट कितने हैं, वर्णाश्रम धर्म के सब ठीक से यदि पालन करेगा कितने लाइफ टाइम, 100 लाइफ टाइम। ब्रह्म यदि ठीक ठीक से ब्रह्मचारी 25 साल फिर 50 साल तक फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर सन्यास ठीक से निभाया आश्रम को वर्णाश्रम धर्म को, तो फिर वो ब्रह्मा पद को प्राप्त करने के योग्य बन सकता है, हैं। जब इस प्रकार प्रत्येक पोस्ट का कुछ क्वालिफिकेशन दी गई कि शास्त्र में ही आप पढ़ के जान सकते हो, और उसी पोस्ट को वो के पद में बैठे हुए हैं, हैं पद के, आप जो पृथ्वी लोक में हैं हम बैठे हैं, पृथ्वी में कोई देवी है पर इसका कोई अधिष्ठात्री देवी है कोई, हैं दुर्गा देवी, पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवी कौन है, भूदेवी, तो उनको आप देखिए आप तो पृथ्वी में ही रह रहे हैं, पृथ्वी में रह रहे ना हम, ये संपूर्ण पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये प्लैनेट है, हैं तो यहाँ हम जब रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कभी देखें इनको कौन इसका, इनके हम रह रहे हैं इसमें, ये विषय पृथ्वी पर उनकी शरीर है, इसे पूरा प्लैनेट की अधिष्ठात्री देवी है, तो उनको हम नहीं देखे। हिमालय एक पर्वत है, हम देख रहे पर्वत को देख रहे, लेकिन हिमालय भी एक व्यक्ति विशेष है कि नहीं, हिमालय क्या है कि हिमालय है ना, जिसकी पुत्री कौन है, पार्वती। तो ये सब जो हम कहेंगे लोग हमको हंसेंगे, साधारण वैज्ञानिक लोग इसको विश्वास नहीं कर सकते, कहते कि ये सब की मिथोलॉजी है, इसे काल्पनिक है, लेकिन आप लोग इसको विश्वास करते हो, हैं जैसे राधा रानी को कहा गया कि वो किसकी पुत्री है, विंध्याचल की पुत्री है, रूप को स्वयं वर्णन करते हैं, यदि वो भ्रुषभानु की भी पुत्री है लेकिन ये विंध्याचल की भी पुत्री को भी बनी थी, विश्वास कर रहे हैं आप, हैं पहाड़ों के कैसे पुत्र हो, लेकिन लेकिन ये सब है भागवत के जो सिद्धांत है, ये यहाँ पर कहा गया कि सूर्य भी एक प्लैनेट है, सूर्य भी एक व्यक्ति विशेष है, अभी जो सूर्य प्लैनेट की जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो है विवस्वान, ये अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करते हैं, हैं प्राणव के साथ, ये भी स्थिर नहीं रहते, जैसे कहते कि सूर्य केवल स्थिर रहता अन्य ग्रह सब नक्षत्र भ्रमण करते हैं, जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं, तो ऐसा नहीं, प्रभुपद जी कहते सूर्य भी भ्रमण करता है, यहाँ पर भागवत पुस्तक में कहा गया सूर्य भी भ्रमण करता है, सूर्य अपने दिव्य रथ पर बैठकर उनके जो सारथी कौन है, सूर्य के सारथी कौन है, अरुण, ये अरुण नहीं अभिमन्यु बना था महाभारत में, कुछ अभी सब करण अरुण ही अभिमन्यु बना, कई कहानियां हैं, जब ये सूर्यदेव कहते कि विभावरी लोक से स्टार्ट करते, विभावरी नेसरी ये देवजानी लोक कौन सा, इसका परे जो देवधानी इंद्र लोक से, ये पूर्व दिशा है, वहीं से प्रारंभ करके फिर आस्ते आस्ते कभी कभी उत्तरायण युग में, उत्तरायण इनको उत्तर से आता है तो उत्तरायण गति में आकर वरुण लोक से फिर आस्ते आस्ते चंद्रमा फिर जमराज के लोक होकर फिर अपने पूर्व दिशा में पहुंचता। फिर ऐसा जब जब उत्तरायण गति होता है तभी सूर्य जब उत्तरायण गति कर उत्तरायण से चलते हैं, उत्तर गति करते हैं, तब दिन ज़्यादा बड़ा होता है और रात्रि छोटा होता है। जब दक्षिणायन गति में चलते हैं तो फिर दिन कम छोटा होते जाता है और रात्रि बढ़ते जाता है, इसलिए चंद्रमा दोनों गति के बारे में गीता में भी वर्णन की गई, उत्तरायण गति दक्षिणायन गति। सूर्य की गति होता है साधन दक्षिण में, कहते कि मकर संक्रांति जो होता है, मकर संक्रांति से कौन सा गति प्रारंभ होता है, उत्तरायण गति है। मकर संक्रांति से दिन आस्ते आस्ते बढ़ते जाता है, मकर से चक्कर तक बढ़ते जाता है दिन। उसी प्रकार दिन छोटा कब, सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। यहाँ पर नक्षत्र का नाम दी गई है, 12 नक्षत्र नेसरी 12 राशि और कितना नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं वो एक क्लास अच्छा दे सकता है। 27 नक्षत्र और 12 राशि, मेष वृष सबसे पहला राशि कौन सा, मेष। ये कहते कि दोनों राशि पर जब सूर्य रहते तो समान दिन रात समान होता है, एक मेष राशि दूसरा तुला राशि, मेष और तुला राशि में जब सूर्य रहते हैं तब दिन रात समान होते हैं। तो लेकिन यह कहना है कि सूर्य भी भ्रमण करता है, यानी कि सूर्य स्थिर रहता है। इस श्लोक में सूर्य के भी भ्रमण की गति कहा रहा है, सूर्य कैसे भ्रमण करता है। सूर्य भी ये मानस उत्तर जो पर्वत है, और मानस उत्तर पर्वत विंध्याचल विंध्य पर्वत के नेसरी सुमेरु पर्वत के साथ साथ अन्य एक पर्वत का नाम यहाँ पर कहा गया, ये पर्वत को हम देख नहीं सकते हैं, ये हमारी ये भूलोक में ही ये पर्वत है, कौन सा, सुमेरु है, लेकिन सुमेरु को हम नहीं देख सकते, देख रहे हैं। ये जम्बूद्वीप में ही सुमेरु पर्वत है वर्णन गया, जम्बूद्वीप में ही हम रहते हैं, जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत से जा रहा है ऊपर बढ़ रहा, बढ़ के ब्रह्मलोक तक आए, ऊपर से उसी पर्वत के ऊपर में ही ब्रह्मा बैठे हुए, ब्रह्मलोक है। चारों दिशा में ये चारों मुख्य देवताओं की लोक है, इंद्र चंद्र वरुण जम, इतने लोक भी ब्रह्मलोक की चारों साइड है, लेकिन हम इसको सब देख नहीं सकते हैं। कभी कभी आप देखो कि प्लेन कहीं ऐसे जा रहा हठात कहीं ठुकर लाके गिर जाता है, कुछ पता नहीं कहाँ ठुकता है, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन है वहाँ सुमेरु। हम इस चर्मचक्की में सब कुछ नहीं देख सकते हैं, देख सकते सब कुछ नहीं देख सकते, इसकी कुछ लिमिटेड पावर है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम एक ब्रह्मांड से रहकर दूसरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हैं, कि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों साइड में कई आवरण है, कई आवरण। जैसे हम पांच महाभूत के बारे में सुनते हैं, जो पृथ्वी जो बना हुआ है सृष्टि, किसमें पांच महाभूत क्या क्या है, भूमि रप नल वायु खम, लेकिन ये एक स्तर दूसरे स्तर, पहला जो स्तर है दूसरे स्तर पहला स्तर से दुगुना होता है, तीसरे स्तर उससे दुगुना होता है, चौथा स्तर उससे दुगुना होता है, ऐसे ही कहा गया। तो इसी प्रकार कितनी ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड की सृष्टि की गई है, माने एक ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड पृथ्वी लोक है, इससे और बहुत बड़े बड़े जो प्लैनेट हैं इनको हमें पृथ्वी में रहकर, हमें जो मनुष्य शरीर में हमको जो आँख दी गई है इसका दृष्टि शक्ति सीमित है, हम सब कुछ इसमें देख नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी चिंतन करते हैं तथाकथित वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ थ्योरी बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं, लेकिन इनकी ज्ञान भी सीमित है, ये भी चारों बद्ध जीव के लक्षण में लक्षण इनके चरित्र में ही दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के पास में चार कमियां है, क्या क्या, इंद्रिया अपूर्ण है, त्रुटि करना टू कमिट मिस्टेक, चीटिंग प्रपेंसिटी धोखा देने की प्रवृत्ति, और माया के द्वारा मोहित होना, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा मोहित होना। भगवान की बहिरंग शक्ति किसी को भी मोहित कर सकती है, सुष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव जस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अभिजस्य चचष्टतेसा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये इतने बड़े बड़े पावरफुल देवता होते हुए भी, बाबा एक एक प्लैनेट के अधिपति होते भी, सूर्य इंद्र आदि ये भी मोहित हो जाते हैं पुरोहित बहिरंग शक्ति के द्वारा, ये भी मोहित हो जाते हैं। साधारण जीवात्मा के बारे में क्या कहा जाए, हम जैसे तथाकथित वैज्ञानिक के बारे में क्या कहा जाए। गौतम ऋषि के एक पत्नी थी, उनके उनके नाम क्या था, अहल्या, जिनको ऐसा वरदान था कि इनकी सौंदर्य कभी भी इनकी उम्र 16 साल से अधिक नहीं बढ़ेगी, सदा नित्य किशोरी रूप में रहती थी। तो इनके सौंदर्य में आकर्षित होकर ये सब देवता लोग आकर्षित हो, सूर्य और चंद्रमा इंद्र आदि आकर्षित होकर उनके पास जाते थे। तो इसलिए माया के द्वारा ये बड़े बड़े शक्तिशाली, कितने शक्तिशाली कोई होने पर भी वो मोहित हो जाता है माया के द्वारा मोहित होना। इसलिए भगवान की शक्ति को जीतना किसके संभव नहीं, किसकी भगवान की सहायता के बिना कोई स्वतंत्र रूप में कार्य करना संभव नहीं है। ये सभी को शक्ति भगवान ही देते हैं, भगवान की शक्ति से ही ये सब शक्तिमान होते हैं, ये किसी का अपना शक्ति नहीं है। चाहे कोई भी कितने बड़े प्लैनेट के अधिपति होने पर भी भगवान जो चाहेंगे तो एक क्षण में उसको समस्त शक्ति से विहीन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते कि हम ये वैज्ञानिकों के निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकते, जो वैज्ञानिक बात इसको स्वीकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं कि सूर्य का ने चंद्रमा के अपना आलोक नहीं है, चंद्रमा सूर्य आलोक के ऊपर निर्भर करता है, बस सूर्य एक नक्षत्र है, चंद्रमा एक ग्रह है, उपग्रह है, ये सब सिद्धांत हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें तो वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करना है। तो वैदिक सिद्धांत के आधार पर जैसे कहा गया है उस सिद्धांत को वैदिक साहित्य के विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। प्रभुपाद जी कहना है कि सूर्य को कभी कभी हम नारायण कहते हैं, कभी कभी सूर्य नारायण कहा जाता है। सूर्य लोक की तो प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रह पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। कई ब्रह्मांड हो सकता है, कई ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन सूर्य केवल एक है। सिद्धांत स्वीकार कर रहे, ब्रह्मा कई हो सकते हैं, ब्रह्मांड कई हो सकता है, प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रह पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य। यहां पर कहते कि प्रभुपाद ने कहते कि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्व अनेक स्तर पर होते, और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड संपूजित है किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रह पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। सूर्य भ्रमण करता है, किस कहाँ भ्रमण करता है सूर्य, कहाँ भ्रमण करता है, सुमेरु पर्वत के चारों साइड में ऐसे भ्रमण करता है। मानसोत्तर पर्वत का पर्वत को बाएं हाथ साइड में रख के ऐसा भ्रमण करता है। तो भ्रमण करता है तो इसको इसीलिए इस चार मुख्य लोक के उसकी प्रभाव पड़ता है। चारों लोक कहा गया, ब्रह्मा लोक तो सुमेरु पर्वत के ऊपर में है, ब्रह्म लोक इसलिए, लेकिन इसके चारों साइड पूर्व दिशा से इंद्र का लोक से प्रारंभ करके फिर वो ऐसे ही भ्रमण ऐसे ही घूमती है। इंद्र का प्रकाश नहीं, सॉरी सूर्य जिस लोक के सामने आ जाता उसे दिन हो जाता है, इसका ठीक विपरीत लोक में क्या होता, रात्रि होता। जब इंद्र के लोक में जब भी दिन है तो देवधानी उसको कहते हैं, देवधानी के लोक में जब दिन है तो इसका मतलब इसके जो अपोजिट में कौन सा लोक रहता है, पश्चिम दिशा में कौन सा रहता है, वरुण। वरुण के लोक में क्या होगा, रात्रि होता है। तो इस प्रकार से वर्णन करता है, हम इसी में भी देख सकते हैं, केवल पृथ्वी लोक में भी, हमारे पृथ्वी में लोक नहीं है, एक ही जगह में है, नहीं कि सब जगह सब समय देश में रहता है। अब यहाँ हम यहाँ पर दिन है और अमेरिका में क्या है, रात है। सूर्य सूर्य ऐसे घूमते घूमते ऐसे ये भी घूमता, पृथ्वी भी अपने कक्षा में घूमता है, तो इस पर जिस साइड सूर्य के सामने आता है उस साइड में, उस साइड में प्रकाश आता है। हाँ, लेकिन ये ठीक से पूरा क्लियर नहीं हो रहा। जो प्रभुपाद जी ने कह रहे कि प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रह पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है, अर्थात एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। जैसे ब्रह्मा एक है, इसी प्रकार एक सूर्य है, एक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, वहां पर अन्य अन्य सूर्य नहीं होते हैं। तो एक ब्रह्मांड के अनुसार, एक ब्रह्मांड में भी निम्नलोक मध्यलोक भूर भुव स्व तीन रहता है। निम्नलोक भी रहता है, पाताल सुतल तलातल आदि जो सात लोक है, फिर ये भूलोक है और ऊपर में स्वर्गलोक है। ऊपर में जो स्वर्गलोक जनलोक महलोक तपलोक आदि ब्रह्मलोक तक सात लोक ऊपर में है, इसलिए कहते कि चौदह लोक हैं। तो ये सभी पूरे ब्रह्मांड में इसे ये आयतन में छोटा, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। लेकिन जैसे प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा उसके सृष्टि करता है, तो उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी एक ही केवल सूर्य रहता है। एक ब्रह्मांड में ज्यादा सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य, वही आलोक हमें इस पृथ्वी में पर भी हमें आलोक दे रहे हैं, वही भी स्वर्गलोक में भी आनंद दे रहे हैं, आलोक दे रहे हैं, और उनके प्रकाश जहां नहीं पड़ रहा है निम्न लोक में, वहां सदा अंधकार रहता है। कौन सा निम्न जो सात लोक है, वो केवल नागों की मणि में, मणि नाग विशाल विशाल नाग रहते हैं, उनके मणि में जो सिर माथे पर जो मणि हो उसके आलोक से आलोकित होते हैं। तो ऐसा ही हमें यहां से समझना पड़ेगा, लेकिन हमें इसको मिथोलॉजी नहीं समझना है। जैसे वैज्ञानिक लोग इसको काल्पनिक समझते हैं, काल्पनिक नहीं है, भागवत की पृष्ठ में जिसको सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करते हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।